जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरु राखहि जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई
गुरु के वचन प्रतीतन जाई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ईश्वर पद की सात भूमिकाएं हैं और अनादि काल से महापुरुषों ने विविध तरीके से उसको समझाने की चेष्टा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस को लिखकर कहा कि कोरी किताब नहीं, किसी राजा रानी की कहानी तक सीमित नहीं। एहि में रुचिर सत्य सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथन। इस मानस में बड़े ही सुंदर सप्त सोपान माने सप्त सीढ़ियां हैं, वो रघुपति की भक्ति की ही चार सोपान है। पहली सीढ़ी में कदम रखो सातवीं पार कर जाओ भक्ति पूर्ण, ये भजन विधि है। इसी को अन्य महापुरुषों ने सप्त भूमिकाओं का नाम दिया कि भजन की शुरुआत कहां से हो। तो हमारे पहले होती है शुभेच्छा, सुविचारना, सत्वापक्ष, तनुमानसा, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा। पहले भजन की शुरुआत आपकी तब होगी जब शुभेच्छा, शुभ के प्रति इच्छा, जिनमें अशुभ है ही नहीं, जो निर्दोष है, शाश्वत नित्य और परम सत्य है, उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा। मनुष्य उलझा रहता अपने कारोबार जीने खाने की परिस्थितियों में, लेकिन हर क्षण दुखी है। मनुष्य का कोई क्षण सुख में नहीं जाता, आज नहीं तो कल दुख। वो तलाशता है कि कोई ऐसी सत्ता भी है जो जैसा सुख जिसके पीछे दुख ने हो, ऐसी शांति जिसके पीछे अशांति ने हो, तलाश में इन्हीं तलाशों की देने की जहां तहां विविध प्रकार की जहीं सुनता है वहीं पूजा आरंभ कर देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ये पुरुष श्रद्धा का पुतला है, एक भी पुरुष ऐसा नहीं कि जिसमें श्रद्धा न हो। इनमें से सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को भजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को भजते हैं, तामसी श्रद्धा वाले भूत और प्रेतों को भजते हैं, लेकिन भजते अवश्य, क्योंकि पुरुष श्रद्धा में है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। ये शास्त्र विधि से रहित किंतु घोर तप को तपते हैं। अर्जुन शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृष करने वाले हैं, इन सब को तू असुर जान। ए माने नहीं, सुर माने दैव, प परम देव परमात्मा का जिसमें देवत्व न अर्जित होता हो उसे असुर कहते हैं। प्रकृति की ओर भरमाता हो परम देव परमात्मा के देवत्व से वंचित हो वो असुर, देव पूजक, भूत प्रेत पूजक और यक्ष राक्षस पूजक, तीनों असुर शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं। और आपका एक सगा भाई असुर सगा देवता हो सकता है, वो प्रकृति की ओर अग्रसर है, बात इतनी सी है। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये बताया कि पुरुष श्रद्धा का पुतला कहीं श्रद्धा होगी अवश्य, तामसी श्रद्धा वाला कहीं श्रद्धा नहीं तो परिवार में अवश्य होगी, भूत माने जीवित प्राणी उनमें कहीं न कहीं श्रद्धा लड़खड़ाएगी उलझी होगी। और उन्नत हुआ तो राशि श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षस, जिससे यश प्राप्त हो जिससे सुरक्षा मिल सके वो वहां अपनी श्रद्धा को केंद्रित करता है। ये राक्षस नाम का कोई अजीबो गरीब व्यक्ति नहीं है, और जो रक्षा करे, रक्षा से राक्षस बना है। विधाता ने जो सृष्टि जल रचा तो बोले और मनुष्यों से कहा इसकी रक्षा करो, आधों ने कहा नहीं हम पूजन करेंगे यशोगान करेंगे, और आधों ने स्वीकार किया कि हम रक्षा करेंगे। तब विधाता ने प्रसन्न होकर उनको शस्त्र दिया और राक्षस की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने विधाता का कहना माना, राक्षस माने होता रक्षक, शास्त्र विधि से रहित किंतु सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, सिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व है ही नहीं। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर परिवर्तनशील, कश्यप अदिति की संतान है नश्वर और परिवर्तनशील, तो नश्वर की ही तो पूजा कर रहे हैं। इसलिए वो घोर तप तपते हैं, लेकिन शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को जो शरीरों का कारण है, भूत माने जीवित प्राणी, और जीवित प्राणियों के उद्गम का कारण है आपका संस्कार, संस्कार का कारण है आपके संकल्प का प्रवाह। ये संकल्प का प्रवाह जो कुछ है अधोगति की ओर अग्रसर है, वो दुर्बल है, परमात्मा के देवत्व से विपरीत दिशा में अंधकार में ले जा रहा है। तो भूत समुदाय को मन के संकल्प के प्रवाह को कृश करने वाले हैं। जो जो इष्ट से दूरी पैदा चली होती जाएगी त्यों त्यों मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात आत्मा में से दूरी पैदा होती चली जाएगी, क्योंकि वो पथिक विपरीत दिशा में भटक रहा है। इसलिए साधनी करना तो शास्त्र विधि से करो। इति गुह्यतमं शास्त्रम, अर्जुन ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तुम कृतकृत्य हो जाओगे, परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे और पूर्ण ज्ञाता हो जाओगे। और भला जीव को चाहिए क्या, ये प्रश्न अलग। तो मनुष्य कहीं न कहीं श्रद्धावान अवश्य है, लेकिन उसकी श्रद्धाएं जहां तहां लड़खड़ाई है, तो चिंतन पद की पहली भूमिका है शुभेच्छा, शुभ के प्रति इच्छा। जो निर्दोष है सत्य है नित्य है उस परम तत्व के प्रति इच्छा की जागृति, ये पहली। जहां इतना हो गया तो आप प्रथम सोपान पर है, केवल इच्छा से तो काम चलेगा नहीं, फिर वो है क्या ढूंढे कहां, उसके लिए मंथन सुविचारना। सुविचार होने लगे तो दूसरी भूमिका, विचार करते करते जहां श्रद्धा आस्था सुदृढ़ हुई तां सत्यापक्ष सत्वापक्ष, जो सत्य है नित्य है सनातन उसका पक्ष सुदृढ़ हो जाता है। वहां जाके हमें श्रद्धाएं स्थायित्व ले गई, जाओ सत्य के प्रति जो आस्था सुदृढ़ हुई कि अब नहीं डिगेगी, तातनुमानसा अब तक तो वो शरीर को अपना तन, शरीरों के व्यापार को अपना अपना समझता था। अब वो मन में ही तन वाला हो गया कि मन जितना विकृत है उतनी योनियों का कारण, जितना संयत है उतना ही मेरा स्वरूप की अभिवृद्धि। तो तनु मांस वो मन में ही तन वाला हो जाता है। जहां साधना थोड़ा उन्नत हुई तो असंग शक्ति, चिंतन में आप लगेंगे तो संग तो कदम कदम पर है ही है। संसार में जो कुछ है संग है, देखना संग, सुनना कुसंग, संग मिले और असंग रहने की क्षमता। कैसा भी वातावरण मिलाए, मिल जाए आपको, फिर भी उससे निर्दोष रह के आगे बढ़ जाना, उसे प्रभावित न होना, असंग रहने की क्षमता आ जाए, तो ये एक भूमिका असंग शक्ति। और जहां साधना और उन्नत हुई तो पदार्थ भावनी, पदार्थ माने संसार। संसार एक पदार्थ है, संसार भोग सामग्री है। मनुष्य जागने से सोने तक रात दिन वो पदार्थ ही ढूंढ रहा है, संसार में अपने भोग जुटा रहा है। इसने हवा पानी जमीन कुछ भी तो नहीं छोड़ा, जिया जंतु किसी को भी तो नहीं छोड़ा, सब उपभोग में ला रहा है। पदार्थ अभावनी, इस पदार्थ का अभाव, पदार्थ है ही नहीं। सिया राम ने सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये कैसा इस तरह आ जाता है, जहाँ प्रकृति थी वहाँ भगवान का संचार दिखाई देने लगता है। जब विषय वस्तु है ही नहीं तो वासना कहाँ से जगेगी, पदार्थ का अभाव। ये एक स्तर है, प्राप्ति नहीं है। साधना का एक चरमोत्कृष्ट अवस्था विशेष है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनु बाना। ये साधना का एक ऐसी दृष्टि का संचार हो जाता है योगी में कि न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रहता है, न नरक नरक के रूप में रहता है कि जिससे हम भयभीत हो, और न वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रहता है जिसकी हम कामना करें। जहां तहां देख धरे धनु बाना, सर्वत्र आराध्य देव के संचार को पाया। यह है पदार्थ का अभाव। और साधना उन्नत हुई तो तुरियेगा मन को महापुरुषों ने तुरंग माने घोड़ा, तुरंग की संज्ञा दी है, गतिशील वेगवान है। इस मन रूपी तुरंग पर सवार हो गए, अब हम मन को जहां चाहे वहां रोक सकते हैं। ये हमें भरमा के कहीं भटका नहीं सकता। इसकी लगाम जब हमारे हाथ में है, हम जहां चाहे जितना चाहे उतना ही साधना में जिधर चाहे मोड़ के स्थिर खड़ा कर सकते हैं। इस अवस्था का नाम है तुरियेगा। ये मन की करीब करीब निरोधा अवस्था है, और ये निरोध मन भी जहां शांत, ये मन रूपी घोड़ा जहां, ये भी सातवीं भूमिका, जहां इसका पार पाया तो स्थिति। तो मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाका कछुवन चाहिए सोई सहन साह। जहां वो तुरंग पर सवार है, जहां चाहता वो रोके रखता है, चिंतन में चाहे श्वास में चाहे रूप में चाहे ब्रह्म विद्या में, किंतु रुका है, जिंदा है। ये भी शांत इतना हो जाए कि संकल्प विकल्प करने वाली प्रक्रिया ही शांत हो जाए, ता फिर मन में मिट गया। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। संकल्प विकल्प वाली प्रक्रिया जहां शांत हुई तो माया मिट गई। अब हंसा बेपरवाह, विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरी बारी विकार। विदाता ने गुण दोष को मिलाकर संसार को रचा, किंतु वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को तो ग्रहण कर लेते हैं, विकार रूपी बारी का त्याग कर लेते हैं। ये ऐसी स्थिति वाले संत हंस होते हैं। आप शेर को घास खिलाए जिएगा, मछली को पानी के बाहर रखो जिएगी, ऐसे ये हंस की तो खुराक ही वही। कदाचित दुर्गुण खाने लगा तो हंस काऊ तो कौआ हो गया। ये हंसा जहां मन का निरोध शोध करते करते मन का निरोध निरोध मंदी जिस क्षण विलय हुआ तत्सन वो परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है और जिसको पाना था पा लिया, अनुभूति होनी थी हो गई। तो वो हंसा जिस गुणों के द्वारा जिस तत्व को ढूंढता था विदित तो निश्चिंत हो जाता है। जाका कछुन चाहिए, यदि आगे कुछ है तो चाह अवश्य होगी, जब चाहने लायक भी कुछ आगे न बचा हो तो ऐसा फिर हंसा बेपरवाह उषा हंसा कछुन चाहिए सोई सहंसा उषाओं का भी सा हो जाता है। तो योग पथ की ये सात भूमिकाएं हैं, इसी को महापुरुषों ने कुंडलनी जागृति, इसी को महापुरुषों ने चक्र भेदन विविध नामों से पुकारा है। एक महापुरुष हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद, उन्होंने इसको संक्षेप में थोड़ा रूप दिया है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को तो मूल द्वार से खेच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सूती नागिन जाए जगाता है, मेरु दंड की सीढ़ी बना कर शून्य शिखर चढ़ जाता है, भ्रमर गुफा में जाय विराजे सुरता सहज बिछाता है, शशि मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुताता है, सब कर मन की धुनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही आप लखाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को। निरंजन गुरु पद रज मृदु मंजुले अंजन नयन दमी अमीय द्रग दोष विभंजन, गुरु महाराज के चरण रज मृदु मंजुल अंजन है, हृदय के नेत्रों के लिए जो पर्दा पड़ा उसके लिए अंजन है, इस दृष्टि दोष को समाप्त करता है। तेही करी बिमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भव मोचन, उन चरण रज के प्रभाव से उस अंजन के प्रभाव से निर्मल नेत्रों की जागृति कर फिर रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूं। इस अंजन का प्रभाव बताया कि सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, पुण्य आत्मा शंकर जी के शरीर में उनके अंग में जो निर्मल विभूति निर्मल ऐश्वर्य पाया जाता है वो गुरु महाराज के चरण रज का ही प्रभाव है। पुण्य पाप से परे तो शिव है, ये एक नवीन पुण्य आत्मा शंकर जी पता नहीं कहां से आ गया, ये क्या है पुण्य आत्मा। वास्तव में क्या पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा, सृष्टि में पूजनीय कौन है जो शिव तत्व में स्थित है, वह महापुरुष शिव माने जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, जो कल्याण तत्व है, जो उसमें स्थित है वह महापुरुष। शिव ज्योतिर्मय परमात्मा की स्थिति का नाम है उस तत्व का, उस तत्व की प्राप्ति वाला प्राप्त करने का अधिकारी वे होते हैं जो कोई पुण्य आत्मा। आज का पुण्य आत्मा सदगुरु के चरण रज का आश्रय लेकर उनसे साधना की जागृति लेकर ये अंजन लेकर और शिव स्वरूप को प्राप्त करता है, वो एक स्थिति है। शिव तत्व एक निष्ठा है, वहां प्रतिष्ठित वह होता है जो आज का पुण्य आत्मा कल की स्थिति वाला कोई भी प्राप्त कर सकता है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये मंगल और प्रसन्नता को प्रदान करने वाली है, आगे इस पर बड़ा बल दिया है लेकिन अब नहीं संक्षेप में। तो निरंजन पद वह कहलाता है जहां पर ये गुरु महाराज के चरण रज का आश्रय लिया था, वो भी उसकी भी आवश्यकता न रह जाए, वो है परम पद। अंजन का परिणाम निकल आया हो, तत्व विदित हो गया हो, केवल्य स्थिति मिल गई हो, वो निर्लेप और निर्दोष पद परम पद, तो निरंजन पद को, उस अविनाशी पद को साधु कोई पाता है, कोई विरला ही संत अवश्य प्राप्त करता है। मानस में आता है कि रामायण देखने की क्षमता हमें कब आएगी, आप लाख पढ़ो, बाल की खाल निकाल के पढ़ डालो, एक एक रामायण की 30-30 आरत कर डालो, एक एक चौपाई की, फिर भी सुनने और सुनने लायक वस्तु आप दूर रहेंगे उससे। कारण कि आरंभ में गोस्वामी जी ने चाबी रख दिया कुंजी, कि रामायण जो कुछ मैंने लिखा है इसको समझने की क्षमता पुरुष में कब आती है। तो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गुरु महाराज के चरण नाखूनों की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। दलन मोहतम शोष प्रकाश हो, बड़े भाग्य रया वही जासू, मोह से उत्पन्न अंधकार को वो प्रकाश नष्ट करने वाला है, और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण ध्यान की स्थिति में उतर आए। मान लो किसी ने रगड़ किया, हृदय में चरण ले ही आया तो उससे लाभ किया, तो उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भवर जनी के, तो हृदय के निर्दोष नेत्र खुल जाएंगे। उस नेत्र के खुलते ही भव रजनी का दोष और दुख मिट जाएगा। भव माने पुनर्भव, भव माने बार बार शरीर का आकार धारण करना, आवागमन का दोष और दुख मिट जाएगा। जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरी निधान। इस गुरु महाराज के चरण रज रूपी अंजन को हृदय के नेत्रों में अंज कर साधक सिद्ध और सुजान, वो अंजन लगाने वाले पथिक होते हैं तीन, पहला साधक, साधक ही हुआ सिद्ध, और वही फिर एक इस तरह से आया सुजान, उस वास्तविकता का पूर्ण जानकार ज्ञाता। ये भूतल भूरी निदान कहीं भी पड़े हुए कोई दृश्य देख सकते हैं, उनमें वो क्षमता होती है, तो इस रज के प्रभाव से वो शिव पद की प्राप्ति, और वास्तविक सुजान वास्तव शुभ की अनुभूति। इसी आशय का ये भजन है कि निरंजन पद को, जहां अंजन की भी आवश्यकता शेष नहीं रहती, अंजन भी अपना कार्य पूरा कर चुका, उस अविनाशी परम पद को साधु कोई पाता है, कोई कोई साधु अवश्य प्राप्त करता है। तो भला इस साधन विधि क्या है, तो मूल द्वार से खेच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। मूल द्वार में चतुष्ट पखुड़ी का कमल, चतुष्ट दल कमल, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सदैव प्रकृति की ओर है, आवागमन की ओर है, ये अधोमुखी है, इनको बांधो, उधर जाने से रोको, ऊर्ध्वमुखी कर दो, यही चतुष्ट दल कमल का खिलना है, इसी का नाम मूल बंध है, इस मूल को बांधो। और यदि हम इनको न बांध सके तो भजन नहीं होगा, कि जिन्हें भजन करना वो तो चिंतवन नीचे की ओर कर रहा है, मन संकल्प प्रकृति का, चित चिंतवन प्रकृति का, बुद्धि निश्चय करती योजना बनाती तो प्रकृति का, और उसमें कदाचित सफलता मिल गई तो अहंकार भी प्रकृति का, वही तो हमें छुड़ाना है। इसलिए मन बुद्धि चित अहंकार, ये जो अधोमुखी प्रकृति और उन्मुख है, इनको उधर से बंद करो, बांधो, और ऊर्ध्वमुखी कर दो, इष्टोन्मुखी कर दो, यह है मूल बंध। इतना होते ही भजन शुरुआत हो गई। साधन योग साधना की शुरुआत हो गई। तो मूल इसका नाम है मूल द्वार, योग साधना का प्रथम द्वार, आत्म दर्शन की प्रथम वो क्या कहते हैं खिड़की। तो मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। इन मन बुद्धि चित अहंकार में विषय रूपी बयार चलती ही रहती, वेग रहता उसमें, उसको खींचो, उस वायुमंडल को खींचो और पलट के उल्टा पंथ चला दो, ईस्ट की ओर कर दो। पहले अधोमुखी था ऊर्ध्वमुखी कर दो तो उल्टा पंथ चलाता है। वो निरंजन पद को पाने के लिए साधन यहां से आरंभ करता है, उल्टा पलट के प्रकृति की ओर से पलट के परमात्मा की ओर इस पथ पर चलाता है। तो उल्टा पंथ चलाता है, कुछ ही अभ्यास जा उन्नत हुआ तो नाभि पंकज दल में सूती नागिन जाए जगाता है। नाभि कहते हैं केंद्र को, जो सारे भले बुरे संस्कारों का केंद्रीकरण है। उस नाभि कमल में सोई हुई नागिन को जगा देता है। नागिन त्रिकोण कुंडली में कुंडली मार के गोलाकार पड़ी हुई है, बड़ी खूंखार डसने वाली, वो है खडदल कमल। वास्तव में ये नागिन है चित्त वृत्ति। ये सतरस्तम त्रिकोण तीनों गुणों की अंतराल में ही कुंडली लगा के बैठी, इसके बाहर नहीं जाती। ये चित्त वृत्ति जब ये विषय उन्मुख है, खड़ विकारों की ओर है, तो जितने विकार बढ़ेंगे उतनी योनियां बढ़ेगी, उतना ही जन्म मिलेंगे। ये विषय रूपी विष उगलती रहती है, इस जीव को भयंकर यातनाएं देती ही रहती है। चित्त वृत्ति अधोमुखी है, खड़ विकारों में प्रसारित है। इन खड़ विकारों को बंद करके काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर, ये अधोमुखी है, ये ऊर्ध्वमुखी हो जाए, खड़ ऐश्वर्य में परिवर्तित हो जाए। विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा, इनका रूप धारण कर ले, बस तो ईश्वर का ऐश्वर्य, प्रभु का प्रभुत्व तो इनके द्वारा अर्जित होता है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है, उस आत्मिक समग्र ऐश्वर्य को आपने अर्जित करती है खड़ेश्वरीय, इसलिए इनका नाम खड़ेश्वरीय है। खड़ विकारों की ओर जो उन्मुख थी, चित्त की प्रवृत्ति का प्रवाह था, उधर से समेट कर खड़ेश्वरीय की ओर प्रवाहित कर दिया। नागिन जग गई, जागना और सोना, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयमी। अर्जुन जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। रात्रि रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं, अचेत दीर्घ कोमा में पड़े हुए हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है, और संयम तभी संभव है जब विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा का संचार आ जाए आपके मन के अंतराल में साधना के क्रम में, अन्यथा संयम कभी नहीं होगा। सब सोए संयम ही जाग जाता है, इसी को महापुरुषों ने विविध तरीके से समझाया। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य है क्या, सोया हुआ अचेत प्राणी। मोहन शब सोवन हरा देखे सपने अनेक प्रकारा, मोह रूपी रात्रि में सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। अब तो रात दिन हम जो अर्जित करते हैं दौड़ धूप करते हैं, ये क्या है, ये है स्वप्न, अनेक प्रकार के स्वप्न। देखे सपने अनेक प्रकारा, हम चाहे स्वर्गीय इकट्ठा कर ले, लेकिन जो आयु के दिन पूरे हुए तो सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, सपना नहीं तो क्या, दोबारे हम लौट के वहां देख भी तो नहीं पाते। इसलिए इससे जागता कौन है, यही जग जामिनी जागे ही योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परम धन अर्थ परम धन के पिपासु, परपंच के भी योगी, योगी इस जगत रूपी रात्रि से जाग जाता है। और सोया क्यों है कि चित्त वृत्ति विकारों की ओर उन्मुख, जगत रूपी रात्रि में मोह रूपी निशा में रात दिन कार्य कर रही तो सोया, और स्वरूप की ओर अग्रसर हुआ तो जागा। और जब सोया है तो नागिन है, दस्ती रहती है, जन्म पर जन्म प्रदान करती रहती है, इसका विष कभी उतरेगा ही नहीं। जीव क्राहता है पूरा मरता भी नहीं, क्योंकि ईश्वर का अंश जो ठहरा सर्वथा नाश तो नहीं होता, चैन कभी नहीं। जिसको नशा हो जाता वही जानता है। तो नाभि पंकज दल में सूती, नाभि कमल में, वो खटदल कमल है, कमल का खिलना, इस चक्र का जागृत होना खड़ विकार है। वो खड़े ईश्वरीय के रूप में, खड़ विकार काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर है। ये सोई है तिन विकारों की ओर, सोई है तो मोह रूपी निशा में अचेत। ये सचेत कब होती है जानिए, तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जागा कब, जगी कब, ये चित्त की प्रवृत्ति का प्रवाह जगा कब, जब समस्त विषयों से वैराग्य हो जाए। तो विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा का जहां रूप लिया वो जग गई, अचेतावस्था समाप्त। तो नाभि पंकज दल में सूती, नागिन जाए जगाता है। और फिर भजन का उतार चढ़ाव सांस पर है, कितना भी साधन करो अंत में महापुरुषों ने नाम और रूप दो पर बल दिया। और जब नाम पे बल दिया तो माला वाला आरंभिक स्तर तो ठीक है, किंतु जब साधना की जागृति हो गई तब माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौ दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये सर ये सुमिरन नहीं, जहां साधना जागृत हुई तो सुमिरन का उतार चढ़ाव श्वसन क्रिया पर है। प्रत्येक महापुरुष इसमें बोला है, इस पर बल देता आया है कि श्वास श्वास पर राम कहो, अलग से मत कहो श्वास पर कहो। वास्तव में भगवान बुद्ध कहते हैं श्वसन क्रिया पर ध्यान दो, प्राणायाम करो, प्राणों के व्यापार को श्वास पर स्थिर करो, केवल इसको देखो, बाकी व्यापार शांत करो। इसको इंगला पिंगला, श्वास पर श्वास, आनापान, वे समय समय पर भाषा के भेद थे महापुरुषों ने, भाषाएं बदलती गई, वो समझाने के तरीके भर बदले, वस्तु विषय वस्तु एक। तो भजन का उतार चढ़ाव, नाम का चिंतन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वास तो मग पांव के तलवों में, हाथ की उंगलियों में, सर्वत्र है। जहां वायु नहीं वहां लकबा मार देगा आप, खत्म हो जाओगे, वो सर्वत्र है। किंतु इस श्वास के प्रमुख आने जाने का रास्ता नासिका से मस्तिष्क, ब्रह्मांड सिर का ऊपरी भाग, मूर्धा पीछे का भाग, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होते हुए नाभि कमल, फिर लौट के रीढ़ की मेरुदंड से होते फिर नासिका द्वार, प्रमुख आने जाने का रास्ता यही है। मन को दृष्टा बन के खड़ा कर दो, देखा भर करेगी श्वास कब अंदर गई कि कब लौटी, बाहर कितनी रुकी फिर कब अंदर गई। हमारी जानकारी के बिना एक भी श्वास खाली नहीं जाने पाए। इस श्वास पर सूरत को मन को स्थिर करो, और जब देखने की क्षमता आ जाए तो आस्ते से चिंतन से इसमें नाम ढाल दो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ओहम ओम, राम राम, मैं, जो भी अनुकूल पड़े, जो प्रभु का ही परिचायक हो। और ये नाम का सुन, श्वास पर सूरत को स्थिर करो, मन को लगाओ। ये अभ्यास चलते चलते इतना उन्नत हो जाए
वो नागिन जग के गई कहां, श्वास प्रश्वास के चिंतन में प्रवाहित हो गई। तो इसका नाम है मेरुदंड की सीढ़ी। श्वास प्रश्वास मेरुदंड से नाभि और नाभि से फिर नासिका द्वार। तो मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर श्वास प्रश्वास श्वसन क्रिया की मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। शून्य शिखर जहां भले बुरे संकल्प शांत हो जाए, और जिस श्वास श्वसन क्रिया पर सूरत को लगाया वो लक्ष्य मात्र रह जाए। भटक सुन मत हो जाओ कि कुछ भी याद न रहे। जिसे हम चाहते हैं सजगता पूर्वक उसे देखो तब तो ध्यान है। कुछ भी नहीं देखो तो शराब पी लो ना, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं है ये रंग छुआ दो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, उससे क्या होता है। जिस प्रभु को चाहता प्रेम पूरित हृदय से उस सूरत उस नाम पर रहे, तो श्वसन क्रिया श्वास प्रश्वास का यजन इतना श्वास में सूरत की डोरी लग गई। पूज्य महाराज जी के श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, ओम ओम ध्वनि प्रवाहित हो जाए, दूसरा वातावरण जैसे था ही नहीं, शांत। तो मेरु दंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। सुन कहते हैं जाने भले संकल्प उभरते हों ने बुरे संकल्प उभरते हों, सुन शांत सम, ये योग साधना का शिखर है, ये मन की निरोधा अवस्था है, ये सुन शिखर। भली बुरी वेव शांत हो गए, हृदय से न किसी संकल्प का अभ्युदय होता है और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं, और जहां सूरत को लगाया वहां सूरत लगी है, चिंतन चल रहा है। तो यह सुन शिखर, ये साधना का शिखर। विवेकानंद से पूछा, जीरो लिख के दे दिया केवल अमेरिका में, बोले जीरो पर बोलो। वो महापुरुष तुरंत गुरुदेव का ध्यान धरा और बोले जीरो इज गॉड। बात तो सही है, जब तक वृत्ति में प्रवाह है भला और बुरा तब तक संसार। ये प्रवाह जहां शांत हुआ, एकदम भली बुरी धाराएं शांत हुई, जिस श्वास पर ध्यान देता है मेरुदंड से श्वसन क्रिया पर, सूरत श्वास पर श्वास पर जब केंद्रित हो गई, अन्य चिंतन जिस क्षण शांत हुए सुन शिखर, इसके सही जीरो। भले उद्वेग उठते हैं न बुरे जीरो, इसके साथ ही है भगवान। भला कैसे शिखर चढ़ जाता है, वहां पर भरमर गुफा में जाए विराजे, सुरता से जब बिछाता है मन ही भरमर है। परमात्मा के पराग को पाने के लिए लालायित, जो प्रभु प्राप्ति के लिए जो भंवरा है मन, वो भरमर कभी दूसरी वस्तु नहीं खा सकता, उसको केवल पुष्प पराग चाहिए। तो परमात्मा को महापुरुषों ने उस फूल की संज्ञा दी है, एक अलग भजन है, फूलवा के छुअल भंवर मर जाई, का कहीं कैसे कहीं को पति आई, फूलवा के छुअल भंवर मर जाई, गुरु महाराज का भजन फिर किसी दिन बताएंगे। तो परमात्मा एक पुष्प है, जो उसके लिए जो भ्रमर था मन, उसको प्राप्ति के लिए वो जहां शून्य की शिखर पर पहुंचा, तो उसी शून्य की कंदरा में सूरत की सैया लगाकर भ्रमर गुफा में जाए विराजे। जो मन भंवरा था, आत्म तत्व को प्राप्ति के लिए जो बेचैन था, उस गुफा में जाके शांत सम बैठ जाता है, रुक जाता है, लेकिन सूरत की सैया लगाकर। मन वैसे कभी नहीं रुकेगा, मन की दृष्टि का नाम है सूरत। आप यहां बैठे हो, मान लो 3600 रंग वर्ष रहे हैं, आप खोए हुए हो मन मस्तिष्क से यहीं पर वातावरण में। सहसा कोई कान में कह देता है कि बच्चा छत से गिर गया, बेहोश हालत में अस्पताल गया, तुरंत आंखें खुली है, दृश्य आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कान खुले एक शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, जबकि एक मिनट पहले आप भूले हुए थे। बच्चे का रोवा रोवा दिखाई पड़ेगा, दांत कैसे, आंख कैसी, नाक कैसा, पांव कैसे, हथेलियां कैसी, रेखाएं कितनी, आंखों की चितवन कैसी। वस्तु नहीं है और वस्तु का जो नक्शा खड़ी कर देती है, इस दृष्टि का नाम सूरत है और इसी सूरत से भजन किया जाता है। ये मन की दृष्टि है, तो इस सूरत को सब, उस सूरत को श्वास पर लगाए हुए है। सूरत को लगा कर ही वो शयन करता है, तो सुरता सहज बिछाता है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। यदि सूरत हमने वहां से हटाई न लगाया तो अन्य संकल्प विकल्प उभरने लगेंगे आपके अंदर, इसलिए सूरत लगी रहे जब तक की प्राप्ति न हो जाए। सहज बिछाता है सूरत के सारे मन टीका। था शशिमंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता है, तो वो है शशिमंडल। मन शशि चित्त महान, यह भली प्रकार सूरत वहां टिकी गई। सुन सीकर पर ने भले उद्वेग न बुरे शांत सम स्थित टिका, तो ऐश्वर्य आभा प्रकाश उतर आता है। ये इसकी प्यास तब मिटती है, ये जिसका विशुद्ध संतान है उस मूल अपने उद्गम अपने परम उस प्रभु को प्राप्त करके ही ये पूर्णत्व प्राप्त करता है। इस जीवात्मा की प्यास पूर्णतया मिटती है, अन्यथा कभी नहीं, अपने स्वस्वरूप को पाकर ही मिटती है। तो वो अमृत तब मिलेगा पहले नहीं। इसलिए शब कर मन की धुनी जलाकर तब में भस्म रमाता है। सारा जो भजन कर्म साधन अनिवार्य था उनकी धुनी जल गई और उसके जलने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके द्वारा जो विभूति है इसलिए तन में आ गई। कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। तमाहु पंडितम बुधा, इस स्थिति वालों को बोधे स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर कहा, इहे व तेर जीते सर्गो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी ते स्थिते। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका की मन समत्व में स्थिर हो गया। सूरत की सहज लगाकर अचल स्थिर रुक गया, बैठ गया। तो मन के अचल स्थिर ठहरने से संसार जीतने से क्या संबंध? तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और भजन करते करते कर्म इतना सूक्ष्म काम और जहां संकल्प से जिस क्षण ऊपर उठा तो ज्ञान अग्नि ईश्वर के दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। ज्ञान माने कुछ थ्योरी स्टडी करना नहीं होता, ज्ञान माने होता है दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति। यो माम अजम अनादिम चे वेति लोक महेश्वरम असम मूढ़े से मृत्यु सुसर्व पापे ही परमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के महान ईश्वर को विदित कर लेता है वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्य में ज्ञानवान है। जब विदित होता उस वक्त जो अनुभूति मिली उसका नाम ज्ञान है, उस जानकारी का नाम ज्ञान है। हमने देखा ही नहीं तो थ्योरियां पढ़ा करो, हिमालय के नक्शे पढ़ा करो रात दिन। पता तो तब चलेगा जब वो हिमालय में पांव रख दोगे कैसा है। तो मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के महान ईश्वर को जो विदित कर लेता है प्रत्यक्ष जान करके और जान लेता है वो पुरुष मरण धर्मा मनुष्य में ज्ञानवान है। वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान माने साधना की पूर्ति में मन के निरोध और विलय काल में जो प्रभु अविदित है वो विदित हुआ उस टाइम मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। गीता के अनुसार हर महापुरुष के अनुसार जिससे जानना था जान लिया,
आगे कोई सत्ता ही नहीं तो ढूंढे किसको। तो दग्ध कर्मानंद कर्म सदा के लिए जल जाता है, अब कर्म करके ढूंढे किसको। आगे कोई भगवान बचा ही नहीं तो आखिर जाएगा कहां, पूजेगा किसको। इसलिए भजन भी समाप्त, अब भजन हमारा हरि करे, हम पायो विश्राम। तो शब कर मन की धुनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, तो ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही आप लखाता है। ता फिर वहां पर केवल जो कण कण में व्याप्त है विरहद है, उस ब्रह्म का आनंद स्वरूप की मस्ती और आप ही आप लखाता है। भगवान जब अपनाते हैं तो अलग से जीव बना के नहीं बैठाते, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भगवान आपकी कृपा से कोई कोई विरला आपको प्राप्त करता है। तो भगवान होते कैसे हैं कैसे, कि जानत तुम ही होई जाई, प्रभु तुम्हें जान करो तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है, तो भला ऐसा कैसे संभव। इस पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सुर शरी मिले सो पावन कैसे, ईश यानी सही अंतर जैसे। एक गिलास गंगा जल नाम है गिलास भर, गंगा से स्पर्श करा दो तो गिलास भर नाम रहेगा कि गंगा की धारा, कम है वो मिट जाएगा और जो धारा है उसका प्रभाव बच जाएगा। ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का विशुद्ध अंश है अविनाशी है। साधना के सही दौर में पढ़कर जहां मूल का स्पर्श किया तो अंश था वो तो मिट गया और अंशी जो व्यापक है वो शेष बच रहा। तो सुर शरी मिले सो पावन कैसे, ईश यानी सही अंतर जैसे। वो विले पा गया, फिर भगवान की भगवत्ता को सर्वत्र अपने ओतप्रोत पाया। प्रभु जब अपनाते तो अपना प्रभुत्व प्रदान कर देते हैं, जीव बना के सेवक बना के नहीं रखते, तो आप ही आप लखाता है। और ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो आप ही आप लखाता है, और निरंजन पद को साधु कोई पाता है। कोई संत अवश्य प्राप्त करता उस अविनाशी, जहां अंजन की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो भी काम पूरा कर चुका उस परम पद को। कोई न कोई साधु जो मन से इंद्रियों को साधता है, साधन परायण है, वो अवश्य प्राप्त करता है। तो पहले मूल को बांधो, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको बांधो पहले। अधोमुखी है प्रकृति की ओर प्रवाहित, इनके वेग को उदस्य इस विषय रूपी वायु के प्रवाह को रोको। इस वायु को रोके उल्टा पंथ चलाओ, इष्ट की ओर इसको बढ़ाओ, चिंतन में लगाओ। जहां खड़े विकार खड़े इस श्रीय में परिणित हो गए दूसरे ढंग से, इसका नाम है मूलाधार। जहां मूल बंधा तो आपको भजन का आधार मिल गया, आधारशिला। योग साधना की मशीन, साधना की पद्धति जिस पर आधारित है वो है मूलाधार। तीसरे ढंग से महापुरुषों ने समझाया मूल बंध और मूलाधार। तो प्रथम मूलाधार स्वधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा और शस्त्रार, ये तीसरा तरीका समझाने का बात वही है। तो पहले उसको मूल को बांधो, उसमें जो वासना का वेग वायु चल रही उसको समेट के इधर लगाओ। खड़ विकार जहां ऐश्वर्यम प्रणीत हुए तो जो सोई हुई वृत्ति अचेत जो अनंत वासनाओं में डुबा रही थी, जो विषय रूपी विष उगल रही थी, जो तुम्हें दस अनंत योनियों तक फेंकती दस्ती जिलाती चली जा रही थी, नागिन है जगाओ। इसी के सारे से श्वास प्रश्वास में लगाओ। जहां श्वास में सूरत स्थिर होगी तो शून्य, शून्य शिखर पर जहां सूरत टिकी तो ऐसे निरोध और इस निर्लेप मन के अंतराल में ईश्वरीय प्रकाश उतर आया। शशि मंडल
परमात्मा की आभा छुटक आई, जहां उनकी अनुभूति हुई तो कर्म भजन करके ढूंढे किसको, कर्म भी धुनी जल गई दग्ध क्रमाणु, ता ब्रह्मानंद की मस्ती अपने में देखा शाही संत अतीत। गीता का ही अनुवाद है ये भजन, और कोई नई चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसको चक्र कहा। अर्जुन यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। गीता के अनुसार योग विधि यज्ञ है, श्वास पर श्वास का यजन यज्ञ है, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना यज्ञ है, एक ब्रह्म में निष्ठ होना श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है, कोई पूर्व यज्ञ स्वरूप महापुरुष और उनके स्वरूप का चिंतन यज्ञ है, हृदय में देवी संपत्ति का अर्जित करना यज्ञ है। 14 पॉइंट बताए, सब मिलाकर योग विधि यज्ञ है। इस विधि को चरितार्थ करना, केवल इस विधि को कर्म कहलाता है। वो एक नियत विधि है, इसलिए इसका नाम नियत कर्म है। इस यज्ञ के द्वारा अर्जुन तुम देवताओं की उन्नति करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते जो जो देवी संपत्ति बलवत्ती होगी आपके हृदय देश में, वही आपकी उन्नति प्रगति है। परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय का स्पर्श करके परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ, तुम और देवता भी शांत, वो भी मुक्त। ये विधि है। एवं प्रवृत्तितम चक्रम, इस प्रकार इस साधने चक्र को कर्म सा उत्थान करते हुए चलना, तेर दत्तान, यही प्राप्ति का एक तरीका वही देने वाले हैं। और इनको न उन्नत करके न स्थिति पर्यंत दूरी तय किए कहता है मैं पा गया हूं, भोगता है वो निश्चय चोर है, अपने साधना क्रम से जी चुराता है। इसलिए इस साधन विधि साधन चक्र के अनुसार जो बरतता है, बरतते हुए वहां पहुंच जाता है जहां आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है, उस महापुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब उसका किए जाने से लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि है, न करे कर्म कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ये यज्ञार्थ कर्म करके हम जिसे ढूंढते थे वो विदित थे, उससे उत्प्रोत है, उसमें स्थित है, आगे कोई कुछ शक्ति बचा ही नहीं तो ढूंढेगा किसको। भजन करके आखिर करें तो क्या करें, फिर भी ये महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं। तो ये है साधन विधि को साधन चक्र कहकर संबोधित किया है। तो महापुरुषों ने समय समय भी साधन पद्धति के घुमाव को एक चक्र की संज्ञा दी। इसी को कुछ मनुष्यों ने, वेदों में नहीं मिलता, उपनिषदों में नहीं, गीता में ये सात चक्रों का कहीं उल्लेख नहीं, मानस में एक कहीं उल्लेख नहीं मिला, योग दर्शन में भी नहीं मिला। फिर भी जब सुदूर काल से चली आई संस्कृत भाषा बैंड लग गया, केवल ब्राह्मण पढ़े पढ़ावे, दूसरे पढ़े ही ना, ये प्रतिबंध अब तक चल रहे थे, बाहर से शिक्षाएं उठ गई, लेकिन महापुरुष लोग जो भजनानंदी थे उन्होंने लोकल क्षेत्रीय भाषा में इस विधि को भली प्रकार समझाने का क्रम जारी रखा। तो उस पाली भाषा में बुद्ध बोले, अर्ध मागधी में भगवान महावीर बोले, कुछ भोजपुरी में बोले, कुछ गुजराती में बोले, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्री में बोले, गीता उसी में लिख डाला। तो महापुरुष जिस किसी भी भाषा में बोले लेकिन अपने हृदय के निर्णय को ही कहते हैं, जो भगवान से पाने वाले भजन जागृत है, आत्मा जागृत है। तो कुछ महापुरुषों ने इसको सप्त चक्र की संज्ञा दी। पहला मूलाधार, स्वधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और शस्त्रार्थ।
यही भगवत पद की सात भूमिकाएं हैं। समय पर समय समय पर महापुरुषों ने विविध तरीके से इसको समझाया है। तो पहली भूमिका है, पहले साधना चक्र में आपको जहां खड़ा होना है वो है मूलाधार, मूल मंत्र। ये है चतुष्दल कमल, ये सबसे नीचे का प्रथम सोपान है ये। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्दल है। संकल्प करने वाली पर शक्ति का नाम मन है। संकल्प के वो बारंबार रिपीट करना चिंतन करने वाली पर शक्ति का नाम चित्त है। और चिंतन करते करते किसी निश्चय पर पहुंच गए, निष्कर्ष निकल गया, तो निश्चय करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि। निश्चय के अनुसार कार्य परिणित हो गया तो हमने किया अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चतुष्टि अंतःकरण है, ये बिल्कुल प्रकृति की ओर उन्मुख है। पहले इन्हीं को बांधो, ये मूल बंध है। और ये जो अधोमुखी विचरण करे इसको इनको समेटो। मन संकल्प करे तो हरि का, चिंतन करो तो इष्ट का, निश्चय करो तो उसका। और यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कर कदाचित हमें अहंकार हो तो प्रभु के शरण पने का। ये चतुष्दल कमल जब यह अधोमुखी प्रकृति और उन्मुखी ऊर्ध्वमुखी हो जाए, चार पखुड़ी खुल गई। ये मूल आपको चिंतन का, योग का, साधना का आधार मिल गया। इसी पे साधन पूरा योग साधना टिकी हुई है, मूलाधार। जहां चिंतन थोड़ा और उन्नत हुआ तहां स्वाधिष्ठान, स्वयमाने स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। भगवान कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमं, जो अक्षय जिसका कभी विनाश नहीं होता, सदा एक रसे ने तिल घटे नराई बढ़े, वो परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, स्वयं माने आप स्वयं, स्वयं में स्थिर भाव अध्यात्म की पराकाष्ठा है। आद्य आत्मा, यहाँ पर भली प्रकार आत्मा का आधिपत्य है, ये संपूर्ण अध्यात्म है। तो इसी ठीक इसी प्रकार स्वाधिष्ठान स्वय मूल बंद हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऊर्ध्वमुखी हुए, चार पखुड़ी खिली, ता फिर वो दूसरा हो जाता है स्वाधिष्ठान। स्वयं माने आप स्वयं, और स्वय स्वरूप आत्म स्वरूप के प्रति स्थायित्व आ गया, आस्था सुदृढ़ हो गई आपकी, अब आप हटाए नहीं जा सकते, आस्था सुदृढ़ हो गई। उड़ उस समय खड़दल चक्र, ये खड़ विकार है, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये प्रकृति की ओर उल्टे हैं, अधोमुखी है, अंधकार की ओर है। ये ऊर्ध्वमुखी हो जाए, विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा, खडेश्वरीय का पालन करने लगे। और यही पालन आपको स्वय स्वरूप की ओर ले जाएगा, आत्म स्वरूप की स्थायित्व, उसके प्रति श्रद्धा का स्थायित्व, स्वाधिष्ठान चक्र और साधना का तीसरा चक्र। अब इन खड़े श्रियों से संचालित होते हुए खड़दल कमल खिल गया, और इसी से संचालित होते होते छह पखुड़ी खिली, और साधना जहां उन्नत हुई तो मणिपूरक। ये है दस दल चक्र, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय। ये जो अधोमुखी थी खड़े श्रीय से संचालित होके ऊर्ध्वमुखी हो गई, ये संयत हो गई। तो मणि पूरक महापुरुषों ने एक एक श्वास को मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रेमन राधे कृष्णा बोल। एक एक श्वास को एक मणि एक रत्न की संज्ञा दी है, मणि पूरक। इस मणि की पूर्ति करने वाली तात भक्ति मणि और वस जाके, दुख लवलेशन सपन ताके। भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, रंच मात्र भी दुख उसके लिए सृष्टि में कहीं है ही नहीं। तो इस भक्ति रूपी मणि की आपूर्ति पूरक है ये,
पूर्ति करने वाली होती है। उस समय 10 दल कमल खिल गया, 10 इंद्रियां जो अधोमुखी थे ऊर्ध्वमुखी हो गई, अष्टदामूल प्रकृति थी वो अष्ट सिद्धि के रूप में परिवर्तित तो हो गई। किसी किसी ने इसको 8 दल कमल कहा। और साधना उन्नत हुई, अनाहत ये 12 कमल, 10 इंद्रियां तो थी ही, मन और बुद्धि, संकल्प और निश्चय, 2 पखुड़ियां उसमें और जुड़ गई, तो 12 कमल ये भी खिल गया। उस वक्त ये नवद्वारे पूरे देही, ये नवो इंद्रियां वाला शरीर, दरवाजों वाला तन, ये निधि बन जाता है, भगवान की विभूति को धारण करने वाला हो जाता है। और अवस्था क्या रहती, अनाहत, फिर प्रकृति के किसी थपेड़ों से वो आहत नहीं हो सकता, वो हो गया अजात शत्रु। आपने महाभारत की कथा सुनी, 5 भाई पांडव, बलशाली भीम हाथी फेंक दे, दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता अर्जुन, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र उसके पास, पल भांजत अर्जुन हने छुए ने दूजो बाण, एक पल में युद्ध का परिणाम दे देता था अर्जुन, लेकिन उसने प्रयोग नहीं किया, केवल योद्धाओं का मान रखने के लिए। शूरवीर नकुल सहदेव, कौरव पक्ष में भी तमाम 18 अक्षौणी जन समूह, लेकिन उनमें सबसे बड़ा योद्धा था तो युधिष्ठिर, अजात शत्रु, जात माने जन्मना, जिसका शत्रु सृष्टि में जन्मा ही नहीं। और युधिष्ठिर के इतने शत्रु थे जितना किसी के भी नहीं, लेकिन उन महापुरुष का नाम है अजात शत्रु। वन की एक घटना है, जंगल की एक घटना है, युधिष्ठिर ने कहा नकुल जरा जल तो लाओ। नकुल आगे बढ़ गया जलाशय के पास, एक यक्ष ने टोका, छूना मत, ये मेरे अधिकार में है, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो, तुम जल ले जाओ। अब वो गरीब क्या जाने 4 प्रश्नों का उत्तर, वो भी बिगड़ा और जहां जल को हाथ लगाया मुंह में डाला तो बेहोश। सहदेव आया वो भी बेहोश, भीम पानी लेने आया तो बोले भीम छूना मत, ये मेरे अधिकार में है, बोले देख पहले मैं पानी पीता हूं, तुम्हारा अधिकार नहीं सिद्ध करता हूं और फिर तुम्हें मुक्ति देता हूं, रुक थोड़ी देर। शूद्र कीटाणु भीम को रोकता है, जहां मुंह में पानी डाला तो भीम भी सफा बेहोश, संज्ञा शून्य हो गया। अर्जुन आया तो बोले कि द्रोण शिष्य अर्जुन खबरदार छूना मत, ये मेरा पानी, बोले देख तुम किस घमंड में हो, कहो तो एक बाण से इस बुलबुले को सुखा दूं, इस जलाशय को, पहले मैं पानी पी के ये सिद्ध करूंगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं, और जो बीच में एक शब्द बोला तो अभी सफाया कर दूंगा। उसको धनुर्विद्या का गर्व था, जहां पानी मुंह में डाला तो 4 भाई बेहोश, बेहोश नहीं समाप्त। युधिष्ठिर ने आके देखा कि इनके शरीर पर विष के भी चिन्ह नहीं है, शस्त्रों के आघात नहीं है, आखिर हुआ क्या, मेरे भाइयों की ये दशा क्यों, जो कुछ है पानी में है। जहां पानी की ओर हाथ बढ़ाया तो बोले युधिष्ठिर तुम्हारे भाइयों को मैं नहीं मारा है, ये पानी मेरा है, 4 प्रश्नों का उत्तर दो। बोले भगवान आप प्रश्न करिए। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए युधिष्ठिर, तो उसने 4 प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, कै वार्ता, कै पंथा, कै मोदिता, आश्चर्य क्या है। पहला प्रश्न, युधिष्ठिर ने कहा यक्ष एक के बाद एक सब लोग मर रहे हैं और जिंदे हैं वो उसको कंधे पे ले जाके उसको जला रहे हैं, कोई गाड़ रहा है, कोई पानी में प्रवाह कर रहा है, फिर भी जिंदे हैं वो अपने को अमर मानते हैं, उसके लिए उपाय नहीं सोचते, भला इससे बड़ा आश्चर्य सृष्टि में क्या होता है। काल अपनी समय की कड़ुचली से पलट पलट के उलट पलट के पका लेता है और आयु के उस मिनट उस क्षण पर पहुंचा देता है जो अंतिम समय इस श्वास का, और पका के मुंह में डाल लेता खा जाता है। इतना क्षण भंगुर नश्वर, फिर भी उस अविनाशी स्वरूप को पाने के लिए जिसके हृदय में श्रद्धा भी नहीं जगती, भला इससे बढ़िया आश्चर्य क्या हो सकता है। तो बोले राजन, दूसरा प्रश्न मेरा है, क्या वार्ता? वार्ता क्या है? बोले सृष्टि में जो कुछ है, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, जो कुछ है नश्वर है, उसमें वार्ता कैसी? इस संसार में वार्ता है तो परम तत्व की जो निर्णायक है वही एक वार्ता है। उसी वार्ता का सानिध्य सत्संग सत्य की बोध कराता सत्संग कहलाता है। तो बोले राजन, तीसरा प्रश्न मेरा है कि आश्चर्य कै वार्ता कै पंथा, रास्ता कौन? तो युधिष्ठिर ने कहा, महाजना येन गता से पंथा, भगवान के अंतरंग भक्त अंतरंग जन जो सचमुच जन है, डिग्रीधारी नहीं, वो जिस जिस हरकत से पहुंच गए वहां वो दूरी तय कर लिया, वही एक पंथ है राजन दुनिया में और कुछ नहीं। भक्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग वही एक पंथ है, परमात्मा के अंतरंग जन भक्त जिस जिस उपाय से उस दूरी को तय कर ले गए। सृष्टि में केवल एक रास्ता है, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। अनंत संसार में सदा प्रवृत्त रहो, चलते रहो, चाल तो नहीं बंद होगी जीव की लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं, किंतु ये एक ऐसा मार्ग है लक्ष्य के करीब समीप पहुंच के दर्शन स्पर्श के साथ स्थिति स्थायित्व पा लेता है, वो अपना धाम अपना घर पा जाता है, यही एक रास्ता है यक्ष। तब यक्ष ने पूछा, प्रसन्न कौन है? तो बोले, जो स्वरूप में स्थित है, आत्म तृप्त आत्म स्थित है, जिसे कुछ जानना शेष नहीं, वो केवल पद प्राप्त महापुरुष। तुरंत बोले, जाओ, तुम्हारा एक बाल एक भाई मैं जीवित देता हूं, एक मांग लो। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जब एक ही को जिंदा रहना है तो नकुल सहदेव में से कोई एक जिला दो। नकुल जी गया। तो बोले युधिष्ठिर, मैं यदि दो जीने के कहूं तो? तो बोले, तब मैं सहदेव को मांगूंगा। बोले, अरे क्यों? भीम बलशाली है, अर्जुन दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें आगे राज दिलाएंगे, ये बालक क्या करेगा? तो बोले यक्ष, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं, राज की नहीं, मुझे चिंता है तो केवल अपने धर्म की। हम पांच भाई हैं, यदि कुंती का एक लड़का जीवित है तो माद्री माता का भी एक लड़का जीना चाहिए, आपने दिया। यदि दूसरे को जीवन चाहिए तो भीम अर्जुन तो काफी जीवन जी चुके हैं, ये सबसे छोटा है तो जीने का अधिकार इसको, मुझे अपने और उसकी चिंता नहीं राज्य की, मुझे तो अपने धर्म सत्य की चिंता है। बहुत खुश हुआ यक्ष, जाओ, तुम्हारे सब भाई जीवित मिलेंगे। जी गए। तब हाथ जोड़ा युधिष्ठिर ने, भगवान, आप यक्ष नहीं हो सकते, यक्षों में मारने की शक्ति तो होती, जिलाने की नहीं होती, जीवन दान देने की। बोली, आप हैं कौन? अपने स्वरूप में आके कृपया दर्शन दें तो धर्म साक्षात भगवान धर्म खड़े हो गए। बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, महाबलशाली सब धराशायी, यहां जीवन दिया तो युधिष्ठिर ने अजात शत्रु, महाबलशाली भीम भी बेकार, उसकी रक्षा की तो युधिष्ठिर ने, हिमालय में सब गल गए लेकिन बचा था केवल युधिष्ठिर। तो अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं होता कि जिसका शत्रु ही न हो, अजात शत्रु माने ये तो साधना है, साधना में तो कदम कदम पर विषम विकारों से हमें संघर्ष झेलना ही है, लेकिन अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं, जो उसे हतप्रभ कर दे उससे उसके रास्ते से पथ से च्युत कर दे, उसे नष्ट कर दे। ये अवस्था होती है पहली दूसरी तीसरी चौथी भूमिका में पहुंचकर अनाहत चक्र। उस टाइम दस इंद्री मन बुद्धि स्टोन मुखी हो जाती है भली प्रकार, और अब कैसी भी विषम परिस्थितियों से वो आहत नहीं होता, हत प्रभ नहीं होता, वो फिर अपने श्रेय पथ की ओर अग्रसर रहता है। जहां ये क्षमता आई तो विशुद्ध, ये विशुद्ध चक्र 16 पखुड़ियों का है। क्षिति जल पावक गगन और समीर पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है जो पिंड है। इसके अंतराल में एक सूक्ष्म शरीर है जो मन का संसार है, वो 16 तत्वों का है। दश इंद्री चतुष्टि अंतःकरण 14 तेजस्य और पराग, और ये संचारित परमात्मा का तेज और वो एक पराग के रूप में है, दिखाई नहीं देता, अमूर्त है लेकिन सदा संचारित है। भजन करने वालों को तो सदा आगे पीछे मार्गदर्शन कर के रूप में खड़ा ही मिलता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, ये 16 जब विशुद्ध हो गया एकदम, शुद्ध का मतलब कि शुद्ध है लेकिन कहीं न कहीं मलाल आ सकता है, विशेष रूप से जहां शुद्ध हो गया तहां फिर स्वामी और सेवक आमने सामने दो दल कमल। जहां स्वामी सेवक आमने सामने तो आज्ञा चक्र, केवल आज्ञा पालन, लेकिन है अलग। अब भगवान के आज्ञा के लिए कटिबद्ध रात दिन एक रस जो टीका है साधक, प्रकृति अवरोध के रूप में अब नहीं है बीच में, क्योंकि अंतःकरण ये सूक्ष्म शरीर अंतर जगत भली प्रकार शुद्ध नहीं, विशेष रूप से शुद्ध है, विकार की संभावना नहीं। ता स्वामी सेवक आमने सामने केवल आज्ञा पालन, आज्ञा चक्र, और उन्हीं के निर्देशन में चलते। जहां और साधना थोड़ी उन्नत हुई तो शस्त्रार, एक तो शस्त्र माने होता है 1000, दूसरा सहस्त्र माने होता है अनंत। आपके मन की प्रवृत्तियां अनंत है, गिनी नहीं जा सकती। रावण की पार्टी अनंत और राम की पार्टी अनंत, एक मन की वृत्ति का प्रवाह है। ये अनंत प्रवृत्तियों से जब इष्टोन्मुखी हो गया भगवान के आज्ञा के आज्ञा में चलते चलते, एक भी प्रवृत्ति अधोमुखी नहीं है, तो विश्वाणु से विष्णु, विश्व में जो अनुसत्ता है परमात्मा, वो अपनी अनुभूति दे देने लगता है। उस परम तत्व परमात्मा की वह परशक्ति जो योगक्षेम प्रदान करती है, वो संपूर्ण रूप से अपनी विभूति से अवगत कराती है। यहां साधक नहीं समझता है तो काकभूषण को विराट रूप का दर्शन कराया, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, अपनी विभूतियों से ऐश्वर्य से अवगत कराती है। जहां अवगत हुआ तो फिर उसे जानकर उसी भाव को प्राप्त हो गया, दृष्टा स्वरूप भाव को प्राप्त हो गया केवल्य पद। ये साधना चक्र है, वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो स्थिति मिल गई। जहां उनको भरी प्रकार जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर उसी में ये जीव की संज्ञा समाप्त और परमात्मा अपना निवास बना लेता उस तन को। राम भक्त हित नर्तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, भक्त के हित के लिए नर्तन धारण कर लेते हैं, संकट सह के भी संतों को सुखी कर देते हैं। ये एक अलग प्रश्न है, उसको छोड़ो। वास्तव में सब मिलाकर विविध तरीके से समझाया मात्र है, और पहले मूलाधार जो चतुष्ट पखुड़ी है, चतुष्टय अंतःकरण जो उधर है उस मूल को बांधो, इष्टोन्मुखी करो, ये आधार मिला तो खड़ विकार खड़े स्त्री में परिणित हो गए तो स्वाधिष्ठान स्वस्वरूप आत्म स्वरूप में स्थायित्व मिलने लगा, मिल गया, वो लाइन पकड़ में आ गई। जहाँ थोड़ा ऊपर उठे तो दस पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, दसों इंद्रियां जब इष्टोन्मुख होगी, जिस क्षण संयत हुई तो मणिपूरक भक्ति मणि की आपूरक हो जाती है, आपूर्ति होने लगती है। और ऊपर हुआ तो फिर जहाँ इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि भी जब विशुद्ध होगी, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी होगी, वो उन्हीं इष्ट के ही चिंतन में प्रवाहित जिस क्षण हुई, तहां एक अवस्था आ गई अनाहत। अब महान संकट में भी वाहत नहीं होता। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षिण युद्धे चाप्य पलायनम, शौर्य तेज पीछे ने हटने का स्वभाव, ये सब स्थिति आ जाती है। प्रहलाद की तरह चाहे पहाड़ से फेंक दो तब भी पीछे नहीं हटेगा, मीरा की तरह चाहे विष का प्याला दो तब भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भगवान की विभूति उसमें है, धैर्य और शौर्य आ गया। तो अनाहत वो कैसी भी विषम परिस्थितियों से आहत नहीं। जहां ये क्षमता आई तो विशुद्ध अंतःकरण 16 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है विशेष रूप से जिस क्षण शुद्ध हुआ, अब विकार का संचार रही नहीं गया अंतःकरण में, तो तुरंत भगवान और सेवक सामने सामने, दो दल कमल, केवल आज्ञा समझो लगो। सहस्रों प्रवृत्तियां हैं चित्त की, जब अधोमुखी से जहां ऊर्ध्वमुखी है तो भगवान अपनी विभूति का बोध करा देते हैं। बोध होते ही साधना, बोध होते ही बोधो ही कोई अस्ति विमुक्ति है, तो जो परम मुक्ति का कारण उसी का नाम बोध है। तत्संग उसे जानते ही कोई स्थित प्रज्ञ है। भगवान कृष्ण ने इस स्वरूप का परिचय दिया है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुं माश्रिताम्, परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ, अति उत्तम अविनाशी परम भाव में स्थित हूँ, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हूँ। ऐसे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाले को मनुष्य कहकर पुकारते हैं, तुच्छ कहकर पुकारते हैं। वे कैसे होते हैं लोग, वृथा आशा वृथा ज्ञान वृथा कर्म में प्रवृत्त रहने वाले, आसुरी और राक्षसी स्वभाव को धारण करने वाले होते हैं, किंतु जो देवी संपद से युक्त भक्त जन है परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, मैं उनका पत्र पुष्प फल जल जो अर्पण करते हैं खाता हूँ स्वीकार करता हूँ, बदले में अपने परम से की स्थिति हृदय से गाइडेंस देते हुए उन्हें ले चलता हूँ प्रदान करता हूँ। महात्मा क्या होते हैं, सने सने परम का स्पर्श करके परम भाव की स्थिति नहीं होते मनुष्य शरीर के आधार वाले। गुरु नानक ने इसका बढ़िया स्वरूप दिया, एक शब्द सम शब्द ताकर जाने भेऊ, और नानक ताका शर नवे सोई निरंजन देव। जो एक है जिसमें अनेकता नहीं, जो सम है जिसमें विषमता नहीं, जो उसका भेद जानता है नानक उसे नमन करता है, वो साक्षात निरंजन देव है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, उस अंजन का परिणाम पा चुका है, अब अंजन की भी जरूरत नहीं। और इस शरीर में किसी प्रकार का कोई कमल नहीं।